ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುಬನ್ ತಪಸ್ವಿ ಭೂಮಿ ಮೇ ಆಕರ್ ಕೆ ಭಟ್ಟಿ ಕರ್ನಾ ಯೇ ಭಿ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹೈ. ತೋ ಮೈ ದೇಖ್ ರಹಿ ಥಿ ಕಿ ಜೈಪುರ್ ವಾಲೆ ಕಿತ್ನಾ ನಾ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಹೈ. ಆಜ ಪ್ರಾತಃ ಭಿ ಮುರಳೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇ ಬಾಬಾ ನೇ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ ಕಿ ಮಿಠಡಾ ಗುರ್ ತೋ ಘುರಾಊ ಹೈ. ಜೋ ಸಿಂಧಿ ಕಹಾವತ್ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಪ್ಯಾರ್ ಕರೋ ತೋ ಪ್ಯಾರ್ ಮಿಲೇಗಾ. ಔರ್ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಭಿ ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ಹೈ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೋ ತೋ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಿಲೇಗಾ. ತೋ ಇಸಿಲಿಯೇ ಬಾಬಾ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಮಿಠಡಾ ಗುರ್ ತೋ ಘುರಾಏ. ಆಪ್ ಬೈಠೋ ಯಾ ಸುನೋ ಬೇನ್, ಯಾ ಸುನೋ ಯಾ ಬಾದ ಮೇ ಬಾಂಟನಾ ಹೈ ನಾ, ಠೀಕ್ ಹೈ. ಬಾಂಟನಾ ತೋ ಪಹಲೆ ಬಾಂಟ ಲೋ ಪಾಂಚ್ ಮಿನಟ್, ಮೈ ಪೀಛೆ ಬೋಲೂಂಗಿ. ತೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಕರ್ ದೋಗೆ ನಾ, ಬಾಬಾ ಕೋ ಭೂಲ್ ಜಾಓಗೆ ಲಿಫಾಫೆ ಬಾಂಟನೆ ಮೇ. ಪಹಲೆ ಬಾಂಟ ಲೋ, ಜೋ ಭಿ ಬಾಂಟನಾ ಬಾಂಟ ಲೋ. ಹಾಂ,
ಔರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇನೆ ಜೋ ಕುರ್ಸಿ ಪರ್ ಬೈಠಿ ಹೈ ಸಬ್ ಆಗೆ ಆ ಜಾಯೇ.
ನೀ
ಸಬ್ ಆಗೆ ಆಕೆ ಬೈಠೋ. ನಹೀಂ ನಹೀಂ, ತೋ ಬೈಠೇ.
ಅಚ್ಛಾ, ಬಾಂಟನಾ ಹೈ ತೋ ಜಲ್ದಿ ಬಾಂಟೋ. ಯೇ
ಬಾಂಟನೆ ಆಪ್ ಏಕ್ ದೂಸ್ರೆ ಕೋ ಪಾಸ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ.
ಹೋ ಗಯೇ ಸಬ್ ಕೋ ಲಿಫಾಫೆ ಮಿಲ್ ಗಯೇ. ಜಿಸ್ ಕೋ ಬಾಂಟನಾ ಬಾಂಟೋ, ನಹೀಂ ತೋ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಕಿ ಬಾಬಾ ಕಿ ಜೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸುನಾಯೇಂಗೆ ವೋ ಆಪ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಹೋ ಜಾಯೇಂಗೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸುನ್ನಿ ಹೈ ಕಿ ನಹೀಂ ಸುನ್ನಾ ಹೈ ನಾ. ಅಭಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಧರ್ ಉಧರ್ ನಹೀಂ ದೇಖನಾ ಹೈ. ಪತಾ ಇಧರ್ ಉಧರ್ ದೇಖಾ ಯಾ ಬಾಹರ್ ದೇಖಾ ಪೀಛೆ ದೇಖಾ ತೋ ಬಾಬಾ ಕಹತೆ ಹೈ ತೋ ಪೀಛೆ ವಾಲಾ ತೋ ಔರ್ ನಂಬರ್ ಲೇ ಲೇಗಾ. ಆಗೇ ವಾಲಾ ಜೊ ನಾ ಪೀಛೆ ದೇಖ್ತಾ ರಹೇಗಾ ತೋ ಉಸ್ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ, ಉಸ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಕಮ್ ಹೋ ಜಾಯೇಂಗೆ. ಅಚ್ಛಾ, ಸಬ್ ಸೆಟ್ ಹೋ ಗಯೇ ಅಭಿ? ಠೀಕ್ ಹೈ, ಸೆಟ್ ಹೋ ಗಯೇ ನಾ ಅಭಿ? ಅಭಿ ಮೈ ಬೋಲ್ತಿ ಹೂಂ ನಾ. ಅಭಿ ಬಾಬಾ ಕಿ ಯಾದ್ ಮೇ ಬೈಠ ಕರ್ಕೆ ಆಪ್ ಸಭೀ ಪ್ಯಾರ್ ಸೇ ಸುನೇಂಗೆ. ಕೋಯಿ ಭಿ ಆವಾಜ್ ನಹೀಂ ಕರೇ, ಇಧರ್ ಉಧರ್ ನಹೀಂ ದೇಖೇ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಆಪ್ ಸಭೀ ಅಪ್ನಾ ಇತನಾ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ ಲೇಕರ್ ಕೆ ಯಹಾಂ ಮಧುಬನ್ ಮೇ ಆತೆ ಹೈ. ತೋ ಮಧುಬನ್ ಕಾ ಏಕ್ ಏಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಹೈ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ಜೈಸೆ ಬಾಬಾ ಕಹತೆ ಹೈ ನಾ ಕಿ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಕಾ ಏಕ್ ಏಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉತ್ಸವ ಹೈ, ಬಹುತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಹೈ. ಐಸೆ ಹಿ ಮಧುಬನ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಆಕೆ ತಪಸ್ಯಾ ಕರ್ನಾ, ಬಾಬಾ ಕಿ ಯಾದ್ ಮೇ ಬೈಠನಾ, ಯೇ ಹಮ್ ಸಬ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಕೆ ಲಿಯೇ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೈ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ಮಧುಬನ್ ಏಕ್ ಐಸಾ ಸ್ಥಾನ ಹೈ ಜಹಾಂ ಪರ್ ಪ್ಯಾರೆ ಸಾಕಾರ ಬಾಬಾ ನೇ ಔರ್ ಸಭಿ ದಾದಿಯೋ ನೇ ಮಿಲ್ ಕರ್ಕೆ ತಪಸ್ಯಾ ಕಿ ಹೈ. ದೇಖನೆ ಮೇ ಬಹುತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಭಿ ರಹೇಗಾ, ಲೇಕಿನ್ ಬಾಬಾ ಕಹತೆ ಹೈ ಯೇ ವೋ ಸ್ಥಾನ ಹೈ ಜೈಸೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೋತಾ ಹೈ ತೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಭಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬನ್ತಿ ಹೈ. ತೋ ಬಾಬಾ ನೇ ಶುರೂ ಸೇ ಯಹಿ ಕಹಾ ಥಾ ಕಿ ಬಚ್ಚೆ ತಪಸ್ಯಾ ಕರೋ, ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಕೋ ಭರ್ಪೂರ್ ಕರೋ, ನಹೀಂ ತೋ ಜೈಪುರ್ ವಾಲೋ ಕೋ ತೋ ಸಾಕಾರ ಮೇ ಬಾಬಾ ಪಹಲೆ ಸೇ ಯಾದ ಕರ್ತೆ ರಹೇ ಹೈ ಔರ್ ಜೈಪುರ್ ಕೋ ತೋ ಬಾಬಾ ವಿಶೇಷ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಆಪ್ ಸಭೀ ಕಿಶನ್ಪೋಲ್ ಬಜಾರ್ ಸೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಜೋ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಥ್ರೂ ಆಯೇ ಹೈ. ತೋ ಬಾಬಾ ಉಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೋ ಶುರೂ ಸೇ ಲೇಕರ್ ಕೆ ಯಾದ ಭಿ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಸಾಕಾರ ಮೇ ಬಾಬಾ ಮುರಳಿ ಮೇ ಭಿ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ತೆ ಥೇ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಪಹಲಾ ಪಹಲಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ವಹಾಂ ಕಾ ಬನಾ ಹೈ. ತೋ ಐಸೆ ಸ್ಥಾನ ಪರ್ ಬೈಠೇ ಹೈ ಫಿರ್ ಭಿ ಆಪ್ ಆಕರ್ ಕೆ ಮಧುಬನ್ ಮೇ ತಪಸ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ ತೋ ವೋ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಹಮಾರೇ ಜೀವನ್ ಕಾ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನ್ ಕಾ ಬಹುತ್ ಹಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೈ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹೈ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ಆಪ್ ದೇಖತೆ ಹೈ ಜಬ್ ಅಭಿ ಆಜಕಲ್ ಸಾರೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶಾಂತಿವನ್ ಮೇ ಹೋತೆ ಹೈ, ಭಾಯಿ ಬಹನೆ ಆತೆ ಹೈ, ಚಾರೋ ಧಾಮ ಕಿ ಚಕ್ಕರ್ ಲಗಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಆತೆ ಹೈ. ಔರ್ ಚಕ್ಕರ್ ಲಗಾತೆ ಹುಯೇ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ, ಬಸ್ ಚಾರೋ ಫಟಾಫಟ ಚಕ್ಕರ್ ಲಗಾಯಾ ಔರ್ ಫಿರ್ ಚಲೇ ಜಾತೆ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಆಪ್ಕೋ ಯಹಾಂ ಪಾಂಚ್ ದಿನ ರಹನೆ ಕಾ ಮೌಕಾ ಮಿಲಾ, ಬಾಬಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ಬಾಬಾ ಕೆ ಕಮರೆ ಮೇ ಔರ್ ದಾದಿಯೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ದಾದಿಯೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ಅನುಭವ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಆಪ್ಕೋ ಯೇ ಸುಂದರ್ ಮೌಕಾ ಮಿಲಾ ಹೈ. ಔರ್ ದೂಸರಿ ಬಾತ್, ಆಪ್ಕೋ ಹಮಾರಿ ಆದರಣೀಯ ಸುಷ್ಮಾ ದೀದಿ ಭಿ ಜೋ ಮಿಲಿ ಹೈ ವೋ ತೋ ಸಾಕಾರ ಮಮ್ಮಾ ಬಾಬಾ ಕಿ ಪಾಲನಾ ಲೀ ಹುಯಿ ಹೈ. ತೋ ಮೈ ಆಪ್ಕೋ ಬತಾನಾ ಚಾಹತಿ, ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಆಪ್ಕೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಹನೋ ಕೋ ಮಾಲೂಮ್ ಹೋಗಾ, ಹಮ್ ಔರ್ ಸುಷ್ಮಾ ಬಹನ್ ಯೇ ದೋನೋ ಏಕ್ ಹಿ ಸ್ಥಾನ ಸೇ. सुषमा बहन का लौकिक परिवार करनाल में, इनके लौकिक पिताजी आए हुए थे जॉब करने के लिए, ये भी उसी समय ज्ञान में आए, तो हम भी उसी समय ही ज्ञान में आए थे। और इनके लौकिक पिताजी बहुत ही सिस्टमेटिकली हर काम को बहुत सिस्टमेटिकल करते थे, और वो हम सब बच्चे उनके बैठते थे, बहुत सुंदर क्लास करते थे, कराते थे। तो शुरू से लेकर के साथ रहे हैं। बाद में मैं चंडीगढ़ में थी तो सुषमा बहन भी वहाँ पर आई, तो वहाँ पर भी हमारा साथ रहा। फिर यहाँ मधुबन में भी आकर के अनेक प्रकार की सेवाएं करते रहे और अभी तक साथ हैं। और दूसरी बात, चंद्रकला बहन तो बाबा की बहुत छोटी सी थी जो कि उसने बाबा की गोदी में खेला, और उसको भी हमने बचपन से देखा। और वो बचपन से ही जब हमसे मिली तो हमेशा उसको भी मधुबन याद रहता था। उनकी सारी पालना मधुबन के द्वारा होती रही है, तो ये पूरा ही दोनों बहनें और चंद्रकला के लौकिक पिताजी और वो मंगूराम भाई और भगवती बहन, वो शुरू से लेकर के बाबा के बहुत नज़दीक, और बाबा भी उनको बहुत प्यार करते थे, और लास्ट तक भी अभी भी मधुबन से बहुत प्यार है। तो ऐसी आत्माओं के साथ आप सबका बहुत बड़ा भाग्य मिला है, तो इसलिए सदा अपने भाग्य के गुण गाते रहना है। और भाग्य जो बाबा दे रहे हैं उसका हमें विस्मरण नहीं करना है। तो एक का स्लोगन आज पक्का रहेगा, मिठड़ा गुड़ तो गुड़ाओ। दूसरी बात, बाबा हमेशा कहते थे जब बाबा के बच्चे बाबा से छुट्टी लेने जाते थे, तो उस समय ये शांति स्तंभ उस समय नहीं था, लेकिन बाबा के अव्यक्त होने के बाद शांति स्तंभ बना, तो बाबा के टाइम पर एक गीत बजता था, भगवान बोलो आगे तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। तो बाबा किस रूप में आप सबको देखते हैं कि आप बाबा के घर के श्रृंगार हैं, बाबा की बगिया के फूल हैं। आप सबको ये भी मालूम हो कि जब बाबा मुरली क्लास में आते थे, पहले बाबा गार्डन में चक्कर लगाते थे और वहाँ से फूलों को एकत्रित करते, कभी फूल की टोकरी लेकर आते थे, कभी कभी बाबा जो है अपने साथ अक्का फूल भी लेके आते थे, कभी कभी बाबा अपने साथ छुई मुई का फूल भी ले आते थे। छुई मुई का फूल समझते ना, लाजवंती फूल, बाबा उसको भी लेके आते थे। तो बाबा क्या कहते थे कि ये मेरे जो है इस भगवान की बगिया के फूल हैं। और दूसरी बात, बाबा कहते थे कि ये फूलों में सब प्रकार के फूल हैं, लेकिन कभी कभी कई बच्चे जब माया के प्रभाव में आ जाते हैं तो उनको आँख का जैसा असर हो जाता है, फिर कभी कभी बच्चे दिल शिकस्त होते हैं तो लाजवंती अथवा छुई मुई फूल जैसे हो जाते हैं। तो अभी आपको ये बताएं कि आप तो वहाँ पर भट्टी करते हैं, सुषमा बहन कराती है और भी भाई बहने अनुभवी टीचर्स आते हैं, आप सबको भट्टी कराते हैं, तो यहाँ जो मधुबन में भट्टी करने के लिए आए, तो जिस स्थान पर बैठ के आप भट्टी कर रहे हैं इस स्थान का मालूम है आपको, जहाँ बैठे जिस हॉल में, पता है ये क्या है? ये बाबा की पहाड़ी है। बाबा के टाइम पर ये पहाड़ी थी और यहाँ पर ये अंगूर की बेल थी जो बेल यहाँ तक आती थी, और बाबा यहाँ आकर के बैठते थे, तपस्या करते थे। और बाबा कभी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, नीचे आंगन में दादियाँ होती थी, अन्य भाई बहने होते थे, तो उसमें गीत बजता था, गीत बजाते थे, धरती को आकाश पुकारे, तो सब दौड़ दौड़ करके यहाँ पर आ जाते थे। और बाबा बैठ करके सबसे, बाबा उस समय योग भट्टी को सेमिनार कहते थे, बाबा कहते थे सेमिनार करो। अभी सेमिनार मीन्स अपने व्यूज को एक्सचेंज करना। तो उस समय बाबा के टाइम पर यहाँ पर बहुत बड़ी अंगूर की बेल थी, और वो बाबा 24 जून को मम्मा डे पर वो अंगूर निकालते थे, पहले बाबा को भोग स्वीकार कराते थे, फिर बाबा ना दो तीन ग्रुप बनवाते थे, बाबा कहते थे जा करके सभी सेंटर्स पर प्यारी मम्मा की याद में अंगूर दो। तो सबसे पहले भाग्य किसको मिलता होगा? अंगूर का है, जयपुर थोड़ी, मधुबन भूल गए क्या? अभी जयपुर में हो या मधुबन में हो है? बोलो मधुबन में है, मधुबन में मिलता है। अब मधुबन में देखो रोज टोली मिलती है कि नहीं मिलती? सेंटर पर रोज मिलती है, जब कोई बहन आएगी भाई आएगा क्लास कराएगा। तो बाबा के टाइम पर बाबा रोज टोली देते थे, और बाबा अभी तक वो सिस्टम चल रहा है टोली का। और बाबा क्या, एक बार की बात सुनाती हूँ, बाबा बच्चों को मजबूत भी करते थे। एक बार बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे जिन्होंने बाबा को याद किए बिना टोली खा लिए वो हाथ खड़ा करो, बाबा डबल टोली देंगे। हैं, सुनिए बात कि नहीं है, बाबा ने कहा डबल टोली। कई तो सीधे साधे आप जैसे होंगे, बाबा डबल टोली देंगे। बाबा ने उनको क्लास में खड़ा कर दिया, बोला बोलो अभी भूल किया ना तुमने? हाँ बाबा भूल किया। बाबा उसको डबल टोली दे के फिर पक्का कराते थे कि भूलना नहीं है। तो इस तरह से आप अभी मधुबन में बाबा के घर में बैठे हो, तो पहला स्थान हमारा मधुबन, फिर उसके बाद अंगूर लेकर के जो ग्रुप जाता था तो जयपुर भी पहुंचता था, जयपुर फिर आगे सभी स्थान, फिर दिल्ली, दिल्ली के बाद करनाल, पंजाब, पंजाब में अम्बाला और अमृतसर, क्योंकि अमृतसर में इस समय चंद्रमणि दादी थी, अमृतसर के आगे और भी स्थानों पर ये सब अंगूर जाते थे। फिर जब टेप पहली पहली बार भरी तो बाबा सभी स्थानों पर भेजते थे, इधर से गुजरात, गुजरात से बढ़ते हुए जाते थे वहाँ बॉम्बे तक, बॉम्बे से महाराष्ट्र, फिर उसके बाद जाता था बेंगलोर साइड में, और इधर चारों तरफ जाते थे। तो बाबा अपने बच्चों का हर समय ध्यान रखते थे। तो मैं बता रही थी कि ये जो है बाबा की पहाड़ी है। जब बाबा अव्यक्त हुए तो पहले पहले अव्यक्त बाप दादा बाबा के कमरे में आने लगे, दादियाँ उसमें मिलती थी, फिर बाबा हिस्ट्री हॉल में आने लगे। फिर एक बार बाबा के बच्चे बहुत हो गए, क्योंकि शुरू में ये पांडव भवन था, ना ज्ञान स्रोत था ना अन्य कोई स्थान थे। तो एक बार बाबा जो है अव्यक्त बाप दादा पांडव भवन के आंगन में आए थे। आप में से कोई होगा नहीं, सुषमा बहन होंगी। तो उस समय जब आंगन में आए तो यहाँ बाबा के कमरे के आगे जहाँ दादी का कमरा है वहाँ बाहर स्टेज बनाई थी, और दो बार भोजन मिलता था सुबह 10 बजे आंगन में, वहीं पर नीचे पट पर बैठ करके भोजन करते थे, और शाम को 6 बजे से पहले, 5 बजे से 6 बजे के अंदर भोजन, और 6 बजे अव्यक्त बाप दादा की पधरामणि होती थी। फिर उसके बाद प्लान किया गया, क्योंकि ओम शांति भवन भी नहीं था, प्लान किया गया कि कोई स्थान बनाया जाए। तो दादी ने और हमारे दादाओं ने और निवे भाई सब ने मिलकर के प्लान किया कि इस पहाड़ी को समतल करके यहाँ पर हॉल बनाया जाए। तो ये हॉल जो है 1973 में बनके तैयार हो गया था। 74 से अव्यक्त बाप दादा इसी हॉल में आते थे। तो डबल फायदा हुआ ना, एक तो बाबा की पहाड़ी पर बैठने का, दूसरा अव्यक्त बाप दादा के यहाँ क्लास कराते थे, अव्यक्त बाप दादा वहाँ कॉर्नर पीछे होते थे, और बाकी सब के सब दादियों सहित सब के सब नीचे बैठते थे, जैसे की पूरी फैमिली हो। फिर जब ये छोटा होने लगा तब जाके 1982 के अंदर, लेकिन 83 में पहली कॉन्फ्रेंस ओम शांति भवन में हुई। वीआईपीस के भी प्रोग्राम यहाँ पर होते थे, लेकिन बाबा तो कहते थे एक समय आएगा पूरे विश्व के अंदर सेंटर्स होंगे। तो अभी तो हम देखते हैं बाबा के वो महावाक्य कि पूरे विश्व के अंदर लगभग 500 के करीब ब्रांचेस और छोटी छोटी गीता पाठशाला विश्व में, और भारत के तो कोने कोने में है, और बाबा कहते थे गांव गांव में ये सब होगा। लेकिन बाबा ने एक बात ये जरूर बताई है कि बच्चों, बाबा को एक बात अच्छी लगती थी कि ब्राह्मण जीवन के जो नियम है उसको पूरी तरह फॉलो करना, और बाबा नियम फॉलो करने वालों को बाबा बहुत प्यार भी करते थे, और बाबा उनके साथ सखा का बहुत अच्छा पार्ट बजाते थे, फ्रेंडशिप का। बाबा हंसते थे, खेलते थे, बाबा बैडमिंटन खेलते थे, जहाँ पर ये अभी शांति स्तंभ है ना, वहाँ पर बाबा बैडमिंटन खेलते थे। और बाबा के अंदर तो इतनी पावर, आप समझ सकते हैं, बाबा जब बैडमिंटन खेलते थे बाबा सदा जीत जाते थे। तो एक दिन बाबा ने क्या किया, बच्चों को उत्साहित रखने के लिए बाबा ने हल्का खेला और बच्चे जीत गए। तो बच्चे बहुत शरारती को बाबा को कहते, बाबा बाबा हार गए, बाबा हार गए। बाबा ने कहा, हार नहीं गए, सब बच्चे बाबा के गले का हार बन गए। तो बाबा हर बात में बच्चों को इतना पक्का कराते थे। दूसरा, बाबा हमेशा कहते थे कि तुम ब्राह्मणों के संस्कार जो है ना वो रॉयल होने चाहिए। संस्कार रॉयल हैं क्योंकि हम जाने वाले रॉयल फैमिली में है ना। आप जाएंगे कौन श्री कृष्ण की राजधानी में जाएंगे, हाथ खड़ा करो। जाएंगे तो श्री कृष्ण के संस्कार तो रॉयल हैं, उनके साथ कौन खेलेगा, श्री कृष्ण के साथ कौन खेलेगा, भाई खेलेंगे कि नहीं। थोड़े से, थोड़ों ने हाथ ही नहीं उठाया है, जो खेलेंगे हाथ खड़ा करो। हाँ बोलो, हम प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले है ना, खेलेंगे तो संस्कार भी तो रॉयल चाहिए ना। तो रॉयल संस्कार के लिए बाबा ने एक कई बातें कही है कि हम जब कोई बात करते हैं ना तो जरा धीरे से करें उसी बात को। कभी कभी कोई बात को हम इतना लंबा करते हैं, अरे बोलना क्या है वो पता नहीं पड़ता। बाबा कहते हैं टू द पॉइंट बोलो। अब एक साकार में बाबा को देखा कि लास्ट में बाबा इतनी पावरफुल बात करते थे दो शब्दों के अंदर, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि जितना साइलेंस का अभ्यास करेंगे उतना आपके शब्दों के अंदर ताकत होगी, उन शब्दों में अनुभूति भी होगी। तो बाबा भी बच्चों के साथ जब खेल करते थे तो बहुत रॉयल्टी से खेल करते थे। एक बार की बात सुनाती हूँ कि एक शुरू में एक पहलवान आया। पहलवान तो आप सोचे कितना खाता है, इतना खाता है, है उसको ढेर सारा खाना चाहिए, ढेर सारा फल चाहिए, ढेर सारी चीजें चाहिए। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, आज ये बच्चे के साथ बाबा खेल करेंगे। तो बाबा ने क्या किया, जो उनके सामने एक बड़ी टोकरी भर के फल रखते थे, खाने में घी मक्खन ढेर देना पड़ता है, पहलवान है ना, अगर नहीं खाएगा तो सुस्त हो जाएगा। तो फल की टोकरी रखी। उस समय बाबा के पास विदेश से कोई एक लकड़ी का एप्पल आया था, तो बाबा ने कहा इसकी फल की टोकरी में रख दो। अब वो खाने बैठा, जब खाने बैठो एप्पल को काट रहा है, गुस्सा भी कर रहा है, ये बहनों ने मेरे को क्या फल दिया है, कटता नहीं, ये क्या दे के चलेगा, उसको समझ ही ना आवे। तो बाबा पीछे देख करके मुस्करा रहे थे। बाबा ने कहा बच्चे क्या हुआ है, बाबा इनको नहीं है तो ये क्यों रखा है इसमें। बाबा ने कहा अच्छा इन्होंने रखा है, बाबा मुस्कुरा। बाबा ने कहा पता है कि बाबा सखा के रूप में तुम उसे खेल कर रहे हैं। तो बस इतना बाबा को चिपक गया, इतना चिपक गया। बाबा ने रॉयल्टी में भी रहते थे, खेल भी करते थे, बच्चों को खिलाते भी थे और बाबा बच्चों से खेल कूद भी करते थे। तो बाबा कहते थे ज्ञान रमणीक है, ऐसा नहीं है ज्ञान रमणीक नहीं है, ज्ञान रमणीक है लेकिन अपने नियम मर्यादाओं को नहीं छोड़ना है। अगर कोई नियम मर्यादा में हल्का हो जाता है ना तो बाबा को संकल्प चलता था कि बाबा इतना कुछ देने के लिए आए हैं तो भी बच्चों को इतना नहीं हो पाता है। अभी मैं आपको और भी बात सुनाती हूँ। अभी कल परसों आपने मुरली में सुना कि बाबा जब ये पहली प्रदर्शनी बनी थी बॉम्बे में, रमेश भाई ने बनवाई थी, उस दो दिन पहले मुरली में था, सुना बाबा को कहा बाबा आओ मुरली ये प्रदर्शनी देखने के लिए। तो बाबा ने, शिव बाबा ने कहा कि ना शिव बाबा बाहर जाते ना शिव बाबा का रथ जाएगा। तो फिर उस समय बाबा ने कहा कि ये प्रदर्शनी माउंट आबू में लाई जाए। तो ये प्रदर्शनी 1966 में यहाँ माउंट आबू में, जो अपना आध्यात्मिक संग्रहालय है ना, उसके सामने वो स्थान था विश्राम भवन, उस समय विश्राम भवन कहलाता था, अभी तो वहाँ शॉप है। तो विश्राम भवन में प्रदर्शनी लगाई थी और बाबा के टाइम बाबा ने क्या किया था, सभी दादियों को, सभी महारथी भाइयों को बुलाया हुआ था। उसमें दादी प्रकाशमणि, बाकी दादियाँ और निवे भाई, रमेश भाई, सबको बुलाया हुआ था। और उस समय हमको बाबा के पास दो महीना रहने का सुंदर मौका मिला, क्योंकि मनोहर दादी करनाल से थी, वह भी आई थी, तो मैं भी करनाल से, तो मनोहर दादी के साथ यहाँ पर आए थे। तो बाबा रोज हर रोज हमारे से मिलते थे। क्यों मिलते थे? मेरे से नहीं, मनोहर दादी के साथ बच्चों का भी कल्याण हो जाता है। मनोहर दादी सुबह क्लास के बाद दादी के कमरे में बैठते थे, तो जो मुरली चलती थी ना, तो फिर दीदी और अन्य दादियाँ बाबा से प्रश्न पूछते, बाबा आज आपने मुरली में ये बताया, देखो बाबा को भी पूछते थे, आज आपने मुरली में ये बताया, तो ये बाबा कहते अच्छा मैंने बताया या शिव बाबा ने बताया, तो बाबा भी बच्चों को कंफ्यूज करते थे, बच्चे बाबा से रूढ़िवान करते थे और बाबा उनको जवाब दे के फिर कहेंगे अच्छा बताओ किसने बताया, शिव बाबा ने बताया या मैंने बताया। तो बाबा पक्का कराते थे कि ज्ञान सुनाने वाला बाबा है। तो जब पहली प्रदर्शनी हुई तो पहली प्रभात फेरी थी यहाँ पर, प्रभात फेरी करके आए, सुषमा बहन आप थी उस समय? नहीं। प्रभात फेरी करके आए तो जहाँ श्री कृष्ण का चित्र है ना, वो छोटी सी पहाड़ी है और बाहर का जो गेट है वो बहुत सिंपल गेट था, तो बाबा उस पहाड़ी पर खड़े होंगे, हम छोटे छोटे बच्चे हाथ में झंडे लिए हुए नारे लगाते हुए पहुंचे, तो बाबा ने सबके ऊपर गुलाबवासी किया, तो बाबा ने इतना स्वागत किया। और फिर क्या था, जब प्रदर्शनी का प्रोग्राम होता था, बाबा जो है एक बड़ी बात सुनाती, रतमन दादी को खास बुलाया हुआ था। रतमन दादी को तो आप जानते, एक्यूरेट और नंबर वन स्ट्रिक्ट। वो क्या करती थी, हम जब जाते थे, मेरे को भी भेजते थे वहाँ प्रदर्शनी में समझाने, निवय भाई और रतमन दादी दोनों प्रदर्शनी के इंचार्ज थे, रमेश भाई भी थे, आते थे जाते थे, तो ये रतमन दादी हमारे पीछे खड़ी रहती थी। इतना डर लगता था इतना डर लगता था कि कुछ भी ऐसा ना बोल दें, लेकिन दादी इतना प्यार करती थी और प्यार से समझाते थे। फिर रात के टाइम हम बाबा के पास जाते थे तो बाबा पूछते थे आज कितनी प्रदर्शनी समझाई, आज किसने क्या प्रश्न पूछा, तो ये था। फिर अमृत वेले रोज बाबा यहाँ आंगन में खड़े होते थे, और आंगन में खड़े होते सब दादियाँ, जैसे गर्मी का महीना था, मई जून का महीना था, जैसे अभी मौसम बड़ा अच्छा है, तो बाबा अमृत वेले योग के बाद चक्कर लगा करके निवय भाई का जो ऑफिस है उसकी सीढ़ियों पे खड़े हो जाते थे, और वहाँ से खड़े होकर के सबको दृष्टि और वरदान देते थे। फिर बाबा आगे चल करके, जो हमारा ऑफिस है ना, उसके आगे बहुत बड़ा थल्ला है ना, वो थल्ले की विशेषता क्या है, जब दिन को देखो तो माताएं सोई पड़ी है ना, क्यों सोई पड़ी है, बाबा के चरण कमल पड़े हैं, तो वहां देखो तो सोई पड़ी है। और जो मेरा ऑफिस है, ये पहले बाबा के टाइम छोटा सा बगीचा था, बाबा रोज उसके अंदर आते थे, और वो त्रिमूर्ति तिकोणा था, अभी तो उसको ठीक किया है, तिकोणा था, बाबा रोज वहां से फूल लेके जाते थे और बाबा उन सबको फूलों से भी प्रभावित भी फूल भी देते थे। फिर उसके बाद बाबा गेट पर जाते थे और गेट के बाहर सड़क पर जाते थे, बाबा कहते फरिश्ते बन के सारे विश्व में उड़ जाओ, अब फरिश्ते बन के सारे विश्व में उड़ जाओ, तो बाबा ऐसे प्रैक्टिस कराया। फिर बाबा बच्चों को बहुत प्यार भी करते थे, और कभी हर समय बाबा अपने पास बुलाते थे, कभी किस दादी को कभी किस दादी को, तो बाबा के साथ कई बार भोजन स्वीकार करने का भी सुंदर मौका मिला, और भी कई बातें लंबा मैं नहीं सुना रही हूँ, लेकिन हम क्या बता रहे हैं कि बाबा की जो पालना थी वो पालना का स्वरूप बाबा ने अपनी बहनों को तैयार किया, और वही स्वरूप हमें मिलता है। तो जब हम भट्टी में आते हैं तो एक तो हमें इस बात का भी, अभी तक तीन दिन से तो आप बहुत अच्छी भट्टी कर रहे हैं, एक तो बाबा से प्यार से बात करो। माताएं क्या करती हैं, कहेंगे बाबा को कौन है मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो, बाबा कहते क्यों तुम नहीं कर सकती हो क्या, भोग के दिन कहेंगे हमारी याद देना बाबा को, बाबा कहते हैं उनको कह दो तुम बाबा के पास नहीं आ सकते हो, इसलिए बाबा के पास जाओ, बाबा के पास बैठ जाओ, बाबा को भोग स्वीकार कराओ। कभी कभी कहते ना बाबा हमारा ये काम नहीं होता, बाबा कहते मैं इस काम के लिए आया हूँ क्या, बुलाया है कि पतित पावन आओ, तो मैं पावन बनाने के लिए आया हूँ ना, मैं कोई इस बात के लिए तो नहीं आया हूँ ना। तो बाबा इस तरह से बताते हैं। एक और बताती है बात, शुरू शुरू की बात है, बाबा एक गार्डन में अपने गार्डन की ड्रेस में फूलों को पानी दे रहे थे। वहाँ पर उस समय एक कपल आया और बाबा को बोला, बाबा यहाँ का जो हेड है उससे मिलना है। बाबा ने कहा, अच्छा आपको यहाँ के हेड से मिलना है? तो बाबा ने उसको कहा, अच्छा ठीक है, यहाँ रिसेप्शन में बैठो। बाबा ने फिर एक बहन को बोला, दीदी को, कि जाओ इनसे मिलो। बार बार इंसिस्ट करें कि नहीं, हमको तो यहाँ के हेड से मिलना है। वो बहन समझाती रही कि यहाँ का तो हेड कोई है ही नहीं, नहीं जो भी हमको उनसे मिलना। बाबा को मैसेज दिया, बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। बाबा जैसे आए वो देखते ऐसे हो गए, अरे ये तो वही है बगीचे में जो पानी दे रहा था, वो तो ऐसे बेहोश होने लगे। तो बाबा ने मुस्कराने लगे, बाबा ने कहा, बच्चे क्या हुआ है? बाबा बाबा आप वही हो ना जो बगीचे में पानी दे रहे थे? बाबा ने कहा, हाँ क्यों, ये भगवान का चैतन्य बगीचा है, भगवान तो सब चैतन्य फूलों को स्नेह का पानी पिलाते हैं, और ये भी बगीचा है, इस बगीचे को मैं भी पानी पिला रहा था। तो बाबा ने तुमको डबल काम सिखाया, चैतन्य फूलों को स्नेह का पानी और इसको अच्छा बनाने के लिए दूसरा पानी। तो इतना प्रभावित हुए कि इतनी बड़ी शक्ति और इतना निर्माण चित, बाबा सदा ही निर्माण चित रहे हैं। और बाबा ने एक बात और भी कही है कि देखो, बाबा हमेशा कहते थे कि कहाँ पर भी हो, जो हमारा नियम और सिस्टम है उसको नहीं भूलो। एक बार क्या हुआ, बाबा जहाँ खड़े होते थे ना, सब बहने भाई बाबा के पास पहुँच जाते। अभी भी ऐसा, जहाँ दादी है ना, झुंड में खड़े हो जाएंगे, ऐसा झुंड में खड़े हो जाएंगे दूसरे को निकलने का रास्ता नहीं मिलता, ऐसा होता है ना। तो ऐसा था, तो बाबा वॉक कर रहे थे, सब बहने आके पहुँच गई। तो फिर बाबा ने किससे कहा, मम्मा कहाँ है? एक बहन कहती है बाबा को, मम्मा तो यहाँ नहीं है, मम्मा पता नहीं कहाँ है। बाबा ने कहा, मम्मा तो यहाँ है। नहीं नहीं बाबा, मम्मा यहाँ नहीं है। बाबा ने कहा, अच्छा। एक बहन को बोला, जाओ किचन में देख के आओ। और मम्मा ने क्या किया, किचन का सारा कारोबार समेट लिया और बाबा की याद में बहुत प्यार से घूम रही थी। बाबा ने कहा, इसको कहते हैं एक्यूरेट योग, यज्ञ का ध्यान, यज्ञ की कोई चीज़ खराब ना हो, कल को कुछ नुकसान हो तो कौन जिम्मेवार होगा, आप तो बच्चों जैसा ही आकर के चलने लग गए। तो बाबा कहते थे यज्ञ की संभाल, यज्ञ का हर कारोबार एक्यूरेट करना और बाबा को याद करना, इसमें जो प्राप्ति होती है, जो भाग्य बनता है, वो बाबा हमेशा अनुभव कराते। और बाबा के टाइम पर एक नियम था, कोई भी बच्चा आए, बाबा हर बच्चे को तीन प्रकार की सौगात देते थे। एक तो कोई ना कोई स्थूल चीज़ देते थे, बाबा कहते थे कि उसको यूज़ करेंगे तो बाबा और मधुबन याद आए। दूसरा बाबा दृष्टि से वरदान देते, तीसरा बाबा टोली देते थे। एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची थी, वो बीमार रहती थी, 3-4 साल की थी। वो बाबा को बहुत याद करती थी, कोई भी चीज़ घर में आए ना, पहले बाबा को देंगे। तो यहाँ आई थी तो बाबा के पास आई, छोटे छोटे हाथ थे, तो बाबा को बहुत प्यार से बाबा ने क्या किया, उसके हाथ में टोली दी, फिर दूसरे हाथ में टोली दी, भर गया उसके ऊपर, टोली के ऊपर, टोली के ऊपर। बाबा ने कहा, देखो शिवलिंग बन गया। तो ऐसे बाबा बहुत प्यार से सबको रमणीक ढंग से सिखाते भी, बाबा की याद में भी करते, और इस तरह से बाबा भरपूर करते थे।